الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى ادخلوا في السلم كافة صدق اللہ عظیم رسول النبی الکریم. جب بھی دینی مجالس میں شرکت کی جائے تو بیان کرنے والا اور سننے والے دونوں اپنی نیت کی تصحیح کریں. یہ کہنا اور سننا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی اصلاح کے لیے ہے. اس میں کوئی نقطے بیان کرنے چرب زبانی کرنی یہ مقصد نہیں اور سننے والے اچھے اچھے واقعات سننے کے لیے لطیفے سننے کے لیے کانوں کو لذت پہنچانے کے لیے نہ جمع. اور بقول میرے شیخ حضرت حاجی محمد فاروق صاحب شفیق الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ ہماری یہ مجلس رسمی اور اسمی نہیں ہے. ہماری یہ مجلس رسمی یا اسمی نہیں ہے کہ کسی خاص مہینے میں مہینہ آیا تو وہ مجلسیں شروع ہو گئیں اور یا نام و نمود کے لیے. یہ تو بس ایک طلب کے لیے مجالس ہوتی ہیں, ایک فکر کے لیے مجالس ہوتی ہیں, گناہوں سے چھٹکارا پا جائے اس کے لیے, دین پر چلنا آ جائے اس کے لیے, اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اس لیے آئیے بیٹھے. جو جیسی نیت لے کر آئے گا اسی کے بغیر اس کو ملے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے اپنی نیتوں کی اس کو صحیح کرنے کی, اس کی مقصود حیات پر آنے کی توفیق عطا فرما. مقصود حیات آج دنیا اس آدمی کو کامیاب سمجھ رہی ہے کہ جس نے بڑا مال کما لیا, اس آدمی کو کامیاب سمجھ رہی ہے جس نے بڑا عہدہ حاصل کر لیا, اس آدمی کو بڑا کامیاب سمجھ رہی ہے جس نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی, بلڈر بن گیا. لوگ تعریف کرتے ہیں, ارے دیکھو یہ ابھی ایسے تھے اور یہ تو بلڈر ہو گئے. بھائی انہوں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کیا, اسٹیٹ ایجنسی کا کام شروع کیا, کرائے پہ لوگوں کو دینا شروع کیے, ادھر سے پکڑا ادھر, ادھر سے ادھر, اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا پلاٹ لے لیا, اس کو بنا لیا, اور دیکھو بناتے بناتے آج یہ بلڈر ہو گئے ہیں. فلاں بلڈر, کیا بات ہے ان کی. تو آج ان کو لوگ اونچی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, لالچی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی ایسے ہوتے. اور گاڑی دیکھی کسی کی, بہت اچھی گاڑی, 50 لاکھ 60 لاکھ, پتہ نہیں کیا کیا ہے, لینڈ کروزر اور یہ اور وہ, کہتے ہیں یہ کامیاب آدمی ہے. میرے پاس تو دیکھو یہ ایف ایکس ہے, تو یہ نہیں دیکھ رہے کتنے ان کے پاس ایف ایکس بھی نہیں ہے. کتنے ہیں جن کے پاس گاڑی چلانے کے لیے ٹانگ بھی نہیں ہے, کہ ایکسلیٹر کیسے دبائیں گے اور بریک کیسے لگائیں گے. تو اس کو کامیابی سمجھ لی ان چیزوں کی, اور یہ مجموعی طور پر کیا ہے, دنیا ہے. صرف اس میں الجھ کر رہ جانا, اور دنیا کیا ہے, ساری تکو دو, ساری کوشش, ساری محنت, سارا ہر وقت بس یہی बाजें हैं सेहत स्मार्ट, सीना इतना हो, पेट इतना हो, कमर इतनी हो, पैर इतने हो, बाजे इसी में लगे हुए, खूबसूरत बनने के लिए, स्मार्ट देखने के लिए, दिखाने के लिए। और जाहिर है जब वो अपने आप को ऐसा बनाएंगे तो ये हमारे ऐसे मुल्लाओं वाला कपड़ा तो पहनेंगे नहीं भाई, है भाई, ये ढीला ढाला। फिर वो क्या पहनेंगे, चुस्त, कि उनका जिस्म झलके नजर आए है? और आ जाएंगे वईद में, कैसा लिबास जिसको पहन के इंसानी आज़ा झलके, फरमाया वो लिबास ही नहीं है। तो हमें अपनी मकसद को दुरुस्त करना होगा। ये चीजें कामयाबी नहीं है, सिर्फ ये चीज इन चीजों में। अब कोई कहे भाई आप कैसी बात कर रहे हैं, हम तो यही देखते हैं, जिसने माल कमा लिया वो बड़ा सा मकान भी बना लेता है, है? उसके यहां सोफा सेट भी बेहतरीन होते हैं, पलंग भी बेहतरीन होते हैं, पर्दे भी बेहतरीन होते हैं, फर्श फुरुश भी बेहतरीन होते हैं, क्रॉकरी भी बेहतरीन होती है भाई। और यही तो है जिंदगी, और क्या है। अच्छे से रहते हैं, खूब खाते पीते हैं, जो दिल चाप मंगवा लिया आज मंगा लो भाई, फला रेस्टोरेंट से खाना, और आज वहां होटलिंग कर लो, आज वहां कर लो भाई, यही तो जिंदगी, और क्या है। आप कह रहे हैं इन चीजों में कामयाबी नहीं है, माशरे में तो इन्हीं लोगों को पूछा जाता है, माशरे में तो इन्हीं लोगों की वाहवाह है, लोग इन्हीं लोगों की मिसालें देते हैं, इन्हीं को अच्छा कहा जाता है, इन्हीं को इनके पीछे चलने की कोशिश की जाती है, ऐसा ही है ना भाई, चलो भाई ऐसे ही है। हर आदमी कहता हाँ ये देखो इन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, पीएचडी कर लिया, या फला कर लिया, फला कर लिया, और आज देखो इतने बड़े ओहदे पे लगे हुए हैं, ये तो कामयाब लोग हैं ये। और यह मजीद आगे बढ़िए, गैर मुस्लिमों की मिसालें, ये तो देखो इतने बड़े लोग हैं, इनके तो तैयार हैं अपने एरोप्लेन्स हैं, वो इतने बड़े बड़े महलात हैं, और इतने इतने अकाउंट्स हैं इनके फला बैंक में और फला बैंक में, इतने एकड़ जमीन है, इतने खेत हैं, इतने बागात हैं, वगैरह वगैरह, इन्हीं की चलती है। हमें तो यही नजर आता है, और इसने कौन किसने देखा है कि इन्होंने कमाया कैसे, ये किसने देखा है, लोग तो ये देख रही है हाँ भाई आ गया इनके पास, इसे इसको कौन देखता है कि चाहे किसी का चोरी किया था, डाका डाला था, है? या गवर्नमेंट से कर्जा लेकर के हड़प कर गए, कुछ भी किया हो, अभी तो ये नजर आ रहा है बड़े मजे में, ठाट से रहते हैं, इनके घर में कमरे में भी एसी है, इनके गाड़ियों में भी एसी है, जहां काम करते हैं वहां भी एयर कंडीशन है, बिल्कुल मजे से रहते हैं, ऐसा ही ना। लेकिन दो चीजें हैं भाई, बजाहिर तो हमें ये नजर आ रहा है कि हाँ ये बड़े मजे में नजर आ रहे हैं, बड़े मजे में, और इन्होंने जिंदगी गुजारी है इन्होंने, लेकिन दो बातें, एक ये है कि ये बस दुनिया तक है, जहां आखरत का तस्वुर आया वहां गुब्बारे से हवा निकल गई, कर लो जो करना है। ये चंद रोजा है, अभी पैगाम अजल आया नहीं कि वो अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, वो मामला शुरू हो जाएगा जिसका कोई मदावा नहीं होगा, अब सब कुछ समझ में आएगा, कैसे माल कमाया था, कैसे खर्च किया था, कैसे बिल्डिंग बनाई थी, कैसे बैंक बैलेंस बनाया था, ईमान को बनाया था कि नहीं, इबादात के साथ किया था कि नहीं, हलाल के साथ किया था कि नहीं, अल्लाह के डर को सामने रखते हुए खर्च किया था कि नहीं, हर चीज में अल्लाह का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को सामने रख के हासिल किया था या पसे पुछ डाल कर हासिल किया था। ये बस वहां से शुरू है और यही वो तसव्वुर है कि जो किसी को वलीउल्लाह बनाता है और किसी को शैतान से भी नीचे गिराता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह की अजमत होगी, बड़ाई होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा होगा, वो डर डर के फूक फूक कर कदम उठाएगा, हर चीज में अहकामात को मालूम करेगा, मसाइल को पूछेगा, कमाने के तरीकों को सही करेगा, चाहे आमदनी थोड़ी हो। लालच नहीं करेगा और यही चीज उसको, चाहे माशरे की निगाह में वो गरीब हो, माशरे की निगाह में ज्यादा पैसे वाला ना हो, ज्यादा ओहदे वाला ना हो, लेकिन अल्लाह की निगाह में ये ऊंचा होगा और वलीउल्लाह होगा, अल्लाह का कुर्ब पाने वाला होगा, अल्लाह के मुकर्रबीन में से होगा, जल्ले शानु अमन वालू। है ना, एक साहब, आप सब तशरीफ फरमा है, साहब सामने से गुजरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब से रियाफ किया, इनको जानते हैं आप, सुहाग्रजन ने अर्ज किया कि रसूलल्लाह हाँ ये फला है, बड़े माल वाले हैं, बड़े इज्जत वाले हैं, रुतबे वाले हैं, ये खड़े हो जाएं किसी की सिफारिश के लिए तो लोग मान जाते, कहीं रिश्ते का मसला हो, शादी करना चाहें तो लोग खुशी से दे दें। उसके बाद एक साहब और गुजरे, आप समय उनके मुतालिक दया फरमाया, इनको जानते हो, अर्ज किया रसूलल्लाह सल्लम बेशक ये हमारे फला हैं और एक मिस्कीन आदमी है, इनके हमारे महल्ले में हमारे इलाके में कोई हैसियत नहीं है, कोई पूछता ही नहीं इनको, कहीं बात करने खड़े हों तो लोग सुनते भी नहीं, पैसा भी नहीं है, माल भी नहीं है, मोहताज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका मफहूम है, अगर पहले वाले आदमी जैसे लोगों से दुनिया भर जाए तो ये आदमी, ये मिस्कीन आदमी उन सब पे भारी है अल्लाह की निगाह में। ये मफहूम अर्ज कर रहा हूं, ये ईमान वाला और आमाल वाला है, अल्लाह के यहां ईमान और आमाल की हैसियत कीमत है। अरे ये माल तो जो है, क्या है ये माल, फरमाया कि दुनिया को अल्लाह मियां ने जब से बनाया एक मरतबा भी निगाह रहमत से नहीं देखा, और अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह की निगाह में मच्छर के पर के जितनी भी होती तो एक काफिरों को जो अल्लाह को नहीं मान रहे है, फरमाया एक घोट पानी का भी नहीं मिलता है, तो हमने इसको मेयार बना लिया और इनको सर पर बैठा लिया और इसके पीछे दौड़ पड़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो एक जरूरत है, दुनिया दीन का मकसूद का, मकसूद को हासिल करने का एक जरिया है, खाना एक जरूरत है, खाएगा حیات کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، پہننا ایک ضرورت ہے، ستر پوشی رہنا ایک ضرورت ہے. ارے بھائی اصل تو آخرت میں، یہ تو اسٹیشن راہ چلتا جیسے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتا مسافر، راہ چلتا مسافر ایسے رہو دنیا میں. کتنے انبیاء ہیں، کیا کیا شان ہے انبیاء کی، نہ ان کا گھر ہے نہ کچھ ہے، اور ہے کیا نبی ہیں، اللہ کے نبی کو حاصل کر سکتا ہے نبی کا مقام. دنیا میں کتنا بڑا عہدہ حاصل کر لے آدمی، بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کر لے آدمی، بولو بھائی نبی بن سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا کوئی مقام ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، بتاؤ ان سے بڑا کوئی کامیاب ہے بغیر مکان کے ہیں، بغیر برتنوں کے ہیں، بغیر فرنیچر کے ہیں. ایک تکیہ اور ایک پیالہ تھا. ایک جگہ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی یہ ہاتھ ایسے کر کے سو رہا ہے، یہ اس طرح ٹیڑھا کر کے ہاتھ اپنے گردن کے نیچے لگا کے ایسے سو رہا. ارے اس سے بھی کام چل جاتا ہے، تکیہ پھینک دی. پیالا رہ گیا. آگے بڑھے، کہیں دیکھا ایک آدمی ایسے چلو سے پانی پی رہا ہے، ارے اس سے بھی کام چل جاتا ہے، پیالا بھی پھینک دیا. اب نہ تکیہ رہا نہ پیالا رہا، سب سے عاری ہو گئے، دنیا سے مستغنی ہو گئے. یہ ہے اللہ کے نبی جن کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا اور قرب قیامت میں آئیں گے. اور ایک چادر تھی غالباً، اسی کو بچھا کے سو جاتے تھے، دن میں اسی کو اوڑھ لیتے تھے. یہ تھے زہد زاہد، ہے کیا اللہ کے نبی ہے. اور نبی بھی کوئی معمولی جلیل القدر نبی، اولو العزم نبی، جن کا اللہ نے اتنا ذکر فرمایا ہے اپنے پاک کلام میں. تو یہ کامیاب نہیں ہے. کس غلط فہمی میں ہم پڑ گئے، کس غلط فہمی میں ہمارے نفوس نے اور شیطان نے ہمیں ڈال دیا ہے کہ مال ہوگا تو ہوگا، عہدہ ہوگا تو ہوگا، فلاں ہوگا تو ہوگا، یہ ہوگا تو ہوگا. حالانکہ یہ تو محض ضروریات ہیں. کسی نے کہا نا زندگی تو کٹی جاتی ہے بھائی، جو فٹ پاتھ پر زندگی گزار لی اس کی بھی کٹ گئی، وہ محل میں ہزار گز کی کوٹھی میں وہ اس کی بھی کٹ گئی. سنا ہے کہ بمبئی شہر میں ایک بہت بڑی آبادی ہے جو فٹ پاتھ پہ ہی پیدا ہوتی ہے اور فٹ پاتھ ہی میں مر جاتی ہے. بہت بڑی آبادی والا شہر ہے، بہت جسے کہتے ہیں کنجسٹڈ آبادی. تو زمینیں بھی بہت مہنگی ہیں، مکانات بھی بہت مہنگے ہیں، وہ فٹ پاتھوں پہ ہی بنائے ہوئے ہوں گے، جھگی چھگی، بس وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑے، وہیں ہوئے، وہیں مر گئے، ہو گئے زندگی. تو ایسے آپ کو کچھ نہ کچھ تو ہر دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر جگہ ہی مل جائیں گے. تو بھائی زندگی تو ان کی بھی گزر گئی، اور جو محل میں رہتا ہے اس کی بھی گزر جاتی ہے، گزری جائے گی. لیکن اس کے لیے اپنے دین کو قربان کر دینا اس سے بڑا بے وقوف آدمی کوئی نہیں. جس کو میرے شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے انٹرنیشنل ڈونکی اینڈ منکی، دنیا کا نمبر ون گدھا اور بندر. اردو میں ترجمہ کر دیا میں نے، اللہ بچائے، اللہ مجھے بھی بننے سے بچائے، آپ حضرات کو بھی، اور جہاں جہاں ہماری آواز جا رہی ہے سب سارے عالم کے انسانوں کو اور مسلمانوں کو پچھنے سے اللہ حفاظت فرمائے. کہ اس عارضی دنیا کے لیے اتنے بڑے اللہ کو ناراض کر لیا اور ان کے احکامات کو پس پش ڈال دیا اور من چاہی چل کر کے مال جمع کر لیا اور یہ کر لیا اور وہ کر لیا، کیا ملا؟ مرنے سے بچ گئے کیا؟ نہیں، موت آ گئی، دنیا سے چلے گئے. ایک صاحب مجھے ابھی سنا رہے تھے کہ وہ انگلینڈ میں یا کون سے شہر میں ایک پاکستانی بڑے دولت مند، بڑا مال وہاں جمع کیا تھا، उनके दोस्त थे वो, जो जिन्होंने मुझे सुनाया ना, वो जब वहाँ गए तो वहाँ मुलाकात भी उनसे, पहले कराची में साथ रहते थे, फिर उनको कहते हैं चांस बन गया, वो वहाँ चले गए, वहाँ कुछ कारोबार कर लिया और अल्लाह ने उनके बरकत भी दे दी और वो हो गए, है ना। चले बड़ी दौलत, बड़ा माल, बड़ा, और क्या हुआ कि छोटी उम्र में इंतकाल हो गया, छोटी उम्र। ये है जिंदगी। अब अगर अल्लाह के अहकामात को सामने रखकर कमाया होगा, है? दीन पर चले होंगे तो चलो खैर है ना। तो दो बातें अर्ज कर रहा हूं मैं, एक बात मैंने ये अर्ज की, पहली चीज है कि आखरत ये दुनिया तक है, जो मैंने इस पर अर्ज किया कि पीछे पता नहीं कि कैसे कमाया, कैसे जमा किया, कैसे हासिल किया और आज इतने बड़े हो गए। बहुत से ऐसे हैं कि बाप मर गया, वरासत का माल था, काबिज हो गया, किसी को नहीं देता है, है? ना बहन को तो पूछना ही गया, बहन तो बेचारे किसी खेती में होती नहीं है, है? वो तो भाइयों की मोहब्बत में मारी जाती है, भाइयों को भी नहीं, हड़प कर गया सारा। अब उसमें बिजनेस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, माल बढ़ गया, अब दुनिया देख रही है कामयाब है, दुनिया को तो नहीं पता इस चीज की, तो बड़ा कामयाब है, मिसालें देने लोग देखो उस आदमी को कितना बड़ा आदमी होंगे, और यही नहीं पता कि उसकी तो जड़ी कटी हुई है, है? बुनियादी गलत है। दुनिया में माल बढ़ जाने से क्या हो जाता है, बेबरकत है ये, ऐसों का माल बेबरकत है, ऐसों के औकात बेबरकत हैं, ऐसों की जो है कोई चीज बरकत वाली नहीं, शराब है, धोखा है। तो एक बात यह अर्ज की कि आखरत का अगर है तसव्वुर सामने आ जाए तो हकीकत वाज़े हो जाए। दूसरी बात इसमें यह है, वो भी उसको ही अंदर वाले भुगत रहे होते हैं, अंदर वाले भुगत रहे होते, बाहर वाले तो नहीं देख रहे, कह रहे भाई बड़ा बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा, अंदर वाले देख रहे होते हैं कि जो भी इस तरह के जमा किया हुआ माल, इस तरह से हासिल किया हुआ ओहदा, इस तरह से बनाई गई इमारात, पुरतायुश सामान वगैरह वगैरह, इसमें बेबरकती, बेसकूनी, बेइत्मीनानी, फसाद, झगड़ा सब कुछ होता है। अल्लाह मुझे माफ फरमाए, कम से कम मैंने जितने बड़े बड़े लोगों को देखा है, बड़े बड़े मकानात वालों को वास्ता पड़ा है और उन्होंने अपने अंदर का हाल बयान किया है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा वास्ता कमोबेश सबको बेसकूनी पाया और उनको जायदाद के झगड़े में ही पाया। बाहर से देखने में लोग रश कर रहे हैं, अरे साहब क्या तीन मंजिला बिल्डिंग देखो, क्या कोठी है, और अंदर यह हालत है कि फसाद चल रहा है, लड़ाई चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, सुकून ही नहीं। अरे भाई तेरे से अच्छा तो वो 80 गज वाला है यार, है? जो सुकून से खाता है, सुकून से सोता है, अपनी चीज है भाई। तो ये दूसरी बात है, पहली बात अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए, आखिरत से भी गए, और दूसरी बात कि जो हासिल किया है उसी में सुकून ही नहीं है, बेसकून है, खा रहे अच्छा है लेकिन ऐसा खाना क्या जो बेसकूनी से खाया जाए। हजरत मुफ्ती वली हसन टोंकी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती आजम पाकिस्तान थे, हजरत शेखुल हदीस कुतुबुल अख्ताम मोहरम जकरी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, लाउलम न्यूटाउन के, लाउ मिनोरी टाउन के मोहतमिम थे, कहते थे भाई शादी का मजा, शादी के खाने का मजा तो घर बैठ के खाने में है ना भाई, किसी के घर से शादी के घर का, शादी का खाना आ जाए घर पे बताओ कितना मज़ा देता है। बिरयानी भी है, टिक्के भी हैं, शीरमाल भी है, मीठा भी है। घर में बैठे मज़ा आता है कि नहीं आता है? सुकून से आदमी खाता है, वहां तो मारामारी में खाता है। बर्तन को ढन से कर दिया उन्होंने, ढन, और सारे लोग ढंढाना शुरू कर देते। दवा थोड़ी शुरू हो जाती, नहीं होती, खेचाता नहीं। वो प्लेटें भर रहा है, वो प्लेट पकड़ रहा है, वो चम्मच उठा रहा है, और घर पे दस्तखान बिछाया, इत्मीनान से बिस्मिल्लाह दुआ पढ़ी, पता नहीं वहां दुआ ही पढ़ते कि नहीं पढ़ते। तो सुकून से खाना है, एक तो जाहिरी सुकून है, एक बाहरी सुकून है। खैर इस पर अर्ज कर रहा हूं कि भाई दाल रोटी खा ली, सुकून से खा लिया, हलाल की खा ली। मेरे शेख रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, अल्लाह दरियात आलिया था फरमाए कि भाई चटनी रोटी है, दिल में ठंडक होगी, चटनी रोटी खाओगे खून बनेगा, तुम्हारे चेहरे से खून झलकेगा, नूर झलकेगा, हलाल की हो, है ना। एक तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा जमीन मेरी। हजरत बारह शेर पढ़ते हैं ना, एक तू नहीं मेरा तो कोई शय नहीं मेरी, है ना। दिल गुलिस्ता था तो हर शय से महकती थी बहार, दिल बयाबा हो गया, आलम बयाबा हो गया। और हजरत वाला ने इसको शायद एक दफा इस तरह भी पढ़ा, देखो इसमें कितनी गहराई है तो सारी सी बात। दिल तुम्हारा था तो हर शय से महकती थी बाहर, दिल बयाबा हो गया, आलम बयाबा हो गया। है? दिल तुम्हारा था, ये है। अल्लाह का हो, अल्लाह का बंदा हो, अल्लाह के अहकामात को सामने रखता हो, अहकामत शरिया को फॉलो करता हो, उसको फोकस देता हो, अब इसकी चीजों में बरकत होगी। अब अगर ज्यादा भी कमा ले, अल्लाह मियां खूब दे दें इसको, कोठी बना ले, बंगला बना ले, गाड़ियां ले ले, लेकिन हुक्म इलाही को सामने रखते हुए हासिल किया है, अब इंशाल्लाह इसमें खैर ही खैर है। अब ये इसके दिल में नहीं होगी, जेब में होगी, हाथ में होगी, क्योंकि इसने दिल में किसको रखा था? अल्लाह को रखा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को रखा था। जिस चीज में पता चला ये जायज नहीं तरीका भाई कमाने का, छोड़ दिया, ये हराम है, छोड़ दिया। ऐसे ऐसे वाकयात सामने आते हैं कि हम तो सोचते हैं पता नहीं हम लोग कहाँ खड़े हैं भाई। अभी इस जुमे में हमारे जहां मैं नमाज पढ़ता हूँ, जुमे के वो बयान फरमा रहे थे कि हजरत इमाम आजम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का वाक़ा सुनाया कि एक दिन जल्दी दुकान बंद करके जा रहे थे, कपड़े के ताजिर थे ना, तो किसी ने पूछा कि हजरत अभी तो जो है क्या कहते हैं उसको, जोरों का वो है वक्त है, बिक्री का वक्त है, और आप इस वक्त बंद कर दिया आपने दुकान? कहा भाई आज असल में ये जो अबर हो रहा है, बादल आए हुए थे, अबर हो रहा था, अंधेरा अंधेरा हो रहा है। कहने लगे ये जो अबर हो रहा है तो मैंने ये सोचा कि ग्राहक आएगा वो कपड़े को सही ना पहचान सके और कम कीमत के कपड़े को बढ़िया समझकर ले जाए तो धोखा हो जाएगा, तो मैंने कहा छोड़ो बंद करो दुकान, किसी को धोखा ना हो जाए, है ना, इसलिए बंद कर दी मैंने। और पता नहीं वो आमदनी मेरे लिए जायज होगी कि नहीं होगी, उस तरह का पैसा कमाना, है ना, ये थी सोच। बताइए आज हम कहाँ खड़े हैं? तो ऐसा कमाए कोई मसलन, और अल्लाह उसके बरकत दें, क्यों नहीं बरकत देंगे भाई? जो अल्लाह के हुक्मों को सामने रखकर चलेगा तो बरकत देंगे। तो उसके लिए दोनों हाथ में लड्डू हैं, बकौल मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, कि दीन भी संभाला हुआ है और अल्लाह में दुनिया भी दे दें, वहाँ तो भाई दोनों हाथ में लड्डू हैं। और बगैर लालच के आया, बगैर हिर्स के आया, दे देते हैं लमिया बरकत बाजों को, वो जिस चीज में हाथ डालते हैं सोना बन जाती है कहते। एक साहब रिजालुल्लाह में से थे, तो एक मिस्कीन आदमी आया, उन्हें कहा लो ये 100 दिनार, वल्ला वाला था मिस्कीन आदमी, कहा कि इसमें बरकत है? कहा नहीं बरकत नहीं है इसमें। कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए इसमें। फिर मिला, कह लो ये 10 दिनार, कैसे बरकत है? कहा नहीं बरकत नहीं है, कह नहीं ऐसे पैसे नहीं चाहिए। फिर मिला, कहा ये 1 दिनार लो, कैसे बरकत है? हाँ ऐसे बरकत है, जवाब मिला, ले लिया। बाजार गया, मछली वाले से एक मछली खरीदी कि चलो मैं घर में कुछ खा पी लें, बच्चे भूखे हैं, बड़ी सी मछली मिल गई 1 दिनार में। उस जमाने में जाके पेट चाक किया घर में, उसके अंदर से एक मोती निकला, सच्चा मोती। जौहरी के पास ले गया, उसने कहा अरे भाई तो बड़ा कीमती मोती है, इसको तो इतने लाख दिनार मिलेंगे। कब देर फिर क्या, अल्लाह लमिया ने दिया है, बरकत वाला दिनार था, एक था लेकिन बरकत वाला था, तो एक के लाख मिल गए, लमिया ने आनन फानन बरकत दिखा दी, तो कहां से कहां पहुंच गया। ये है बरकत, मादियत और चीज है, रूहानियत और चीज है, ये अल्लाह के अहकाम में बरकत है, अल्लाह के जिक्र में बरकत है, तकवा में बरकत है ना। कलील कसीरुन नफा, देखने में थोड़ा नफे में ज्यादा, यह बरकत। और कसीर कलीलुन नफा, ज्यादा लेकिन नफे में थोड़ा, यह बेबरकती। ये अल्लाह वाले और ये मशायख और ये सूफी इतने बड़े बड़े जो अइमा किराम की किताबें हैं, इतनी जखीम जखीम किताबें हैं, उलमा कराम ज्यादा जानते हैं कि बाज़ों ने उसका औसत निकाला, उनकी जिंदगी का और जो उन्होंने किताबें लिखी उन अवराक का औसत निकाला, तो एक एक दिन में 17-17, 18-18 सफात आए लिखाई के, या और इससे भी ज्यादा। उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, इतना तो हम पढ़ते भी नहीं है जितना कि उन्होंने वो लिख गए, तफासी और फिका और ये और वो, तो क्या चीज थी? वो यही बरकत थी। कहा था कि मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना शफी थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात में भी लिखा है कि अल्लाह ने आपके औकात में इतनी बरकत दी थी और इतनी मदद होती थी। कोई मजमून तलाश कर रहे हैं, किताब निकाली, किताब खोली, सामने वो मजमून। एक अगला आदमी उसको ढूंढने में 4 घंटे लगाए और यहां किताब खोली और सामने मजमून आ गया, हो गई बरकत। ऐसी मदद होती थी अल्लाह ताला। तो अल्लाह अपने मकबूलीन सवालहीन के और उन लोगों के जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के अहकामात को सामने रख के जिंदगी गुजारते हैं, हर मामलात में ऐसे बरकत देते हैं, उनके औकात में, उनके माल में, औलाद में वगैरह वगैरह। उसकी मशीयत है, औलाद दी है तो बरकत देंगे, किसी को नहीं भी देते, जैसा उसकी मशीयत है। तो इन चीजों से तासुर नहीं लेना है, सिर्फ इन चीजों से। तो ये दोनों बातें सामने होंगी और ये किसी से हमें बदगुमानी भी नहीं करनी। ये अर्ज नहीं कर रहा कि किसी को देखा खामखा बिल्डिंग वाले को तो बदगुमानी शुरू कर दी, इसने तो भाई ऐसे माल कमाया होगा, ऐसे बनाया होगा, वो हमारे शेख साहब ऐसे कह रहे थे, शेख साहब को मरवा दिया। किसी की गाड़ी देखी अच्छी, ऐसा नहीं भाई, ये तो बदगुमानी तो बहुत खतरनाक गुनाह है, बहुत खतरनाक गुनाह है। अल्लाह की पनाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और खुशगुमानी पर मुफ्त का सवाब मिलता है, फरमाया कि किसी से अच्छा गुमान रखो तो मुफ्त का सवाब मिल जाएगा। एक मुसलमान के साथ हुस्न ज़न रखना मुफ्त का सवाब। और बदगुमानी अल्लाह बचाए अल्लाह बचाए क़यामत के दिन साबित करनी पड़ेगी। हाँ, तुमने ये किसके साथ ये सोचा था, ये साबित करो इसको। अस्तग़फ़िरुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। तो गुमान सबसे अच्छा रखना है। हम तो अपने लायमल की बात कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं कि इन चीजों में, सिर्फ इन चीजों में कामयाबी नहीं है। सिर्फ कलब इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये अल्लाह की नेमतें जरूर हैं, कामयाबी का मयार नहीं। कामयाबी का मयार ईमान, आमाल और तकवा है। अल्लाह के यहां वो बड़ा है। शेख ने फरमाया, दुश्मनों को ऐश आबो गिल दिया और दोस्तों को अपना दर्द दिल दिया, उनको साहिल पर भी तुगयानी मिली, हमको तूफानों में भी साहिल दिया। ये सारा कच्चा चट्टा बयान कर दिया हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने। ये लोग गलतफहमियों का शिकार है ना, बेचारे कहते हैं वो इम्प्रेस हैं और डिप्रेस हुए जा रहे, सोच सोच करके क्या यार, उसके पास तो तैयार हैं भाई और मेरे पास एक यारा भी नहीं है। तो ये कामयाबी का मयार नहीं है, इत्मीनान रखें। अल्लाह के बाजे बंदे ऐसे हैं, फरमाया कि दुनिया वाले उनको जैसा भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़ा किया ना कि इन जैसे दुनिया भर जाए तो उस एक के बराबर भी नहीं हो सकते। तो ऐसे ही बाजे अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि उनसे लोग सीधे वो बात नहीं कर रहे, वो उनका माशरे में कोई मुकाम नहीं है, लेकिन ऐसे ईमान वाले, आमाल वाले और मुत्तकी हैं कि अगर भूले से भी किसी बात पे कसम खा लें कि अल्लाह भी ऐसा कर देंगे, मेरा मौला ऐसा कर देगा, तो अल्लाह वैसे ही कर देता है। अल्लाह के यहाँ ये मुकाम है, इसलिए कि फलसफा वही है। ये दुनिया के अल्लाह के निगाह में कोई हैसियत है ही नहीं, जिसको हमने मयार बनाया हुआ है, जिसको हम बड़ा बनाए हुए हैं, है अल्लाह के, तो उसका कोई मुकाम ही नहीं है। ये सारे देखो, ये दीनी मदारिस में बेचारे यानी उलमाए कराम जो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, छोटी छोटी तनख्वाहें, मुख्तसर मुख्तसर, ये अइमा हजरात जो इमामत कर रहे हैं इनका पूछो कितना देते हैं भाई कमेटी है? वो आजकल वो मैसेज मिलता रहता है अहबाब का कि बिल्डिंग पे इतना बना दिया, कंस्ट्रक्शन पे इतना लगा दिया, बिजली के निजाम पे इतना लगा दिया, फर्श पे इतना लगा दिया, और इमाम की तनख्वाह 9,000 रुपये, 8,000 रुपये। कहने वाले कहते हैं भाई आप तो इस पे लगा रहे हो 50 लाख मसलन, इस बेचारे की भी आल औलाद है ये है, लेकिन कभी किसी हमने नहीं सुना कि भाई वो कह रहा हो कि भाई हमारा हम जा रहे हैं यहां से छोड़ के, सिर्फ इसलिए कि तनख्वाह कम है। मुलाजमतों में तो आप अक्सर देखेंगे दुगनी तिगनी तनख्वाह मिल गई, भाई हम जा रहे हैं, नहीं देखते आगे पीछे। तो ये दीन का काम करने वाले, इसीलिए इनकी अल्लाह के यहाँ इनका मुकाम है। ये वहां के बादशाह हैं, ये कामयाब लोग यही हैं जिन्होंने दीन को मकसूद बनाया हुआ है और इसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। क्या ये कारोबार नहीं कर सकते? क्या ये इस काम को छोड़ के और कुछ नहीं कर सकते? जहां मोटी मोटी तनख्वाह मिल जाए कर सकते हैं, लेकिन दीनी खिदमत, और इसी में फिर अल्लाह बरकत दे देते हैं। अल्लाह ताला हमें मकसूद पर आने की तौफीक दे, हमारे दिल से दुनिया को निकाल दे। लेकिन एक बात और अर्ज कर देता चलूं, इस मौजू से मुताल्लिक है कि किसी को अल्लाह माल दे, जायदाद दे, अहदा दे, कुछ भी दे, ये जैसा अर्ज किया ये भी अल्लाह की नेमतें हैं, इसका शुक्र अदा करे और इसको ज़ाया ना करे कि जी हमने तुम्हारा बयान सुना तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, फेंक दो इसको, लात मार दो। फरमाया नहीं, इसको तरीके से इस्तेमाल करे, ज़ाया ना करे, असराफ ना करे, ये अल्लाह की नेमतें हैं। बखौल हमारे हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के कहते हो यार दुनिया को लात मारो लात मारो, पेट में रोटी नहीं होगी तो मारने के लिए लात उठेगी भी नहीं। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बखौल के कोठी महलात में शाले दोशाले में मुर मुरगन खाकर भी औलिया अल्लाह बन सकता है आदमी, अल्लाह की नाफरमानी ना करे और ताक को बजा लाए। मेरे कई मेरे बयान से इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जो माल वाले हैं और ये इन चीजों वाले वो ये ना दिल छोटा करें कि भाई इन्होंने सब चीज की नफी कर दी। जो हलाल जरिए से आ रहा है उसको हमारे काबिल क्या नहीं थे? यही अभी इमाम आज़म रहमतुल्लाह का जो सुनाया, कितने बड़े ताजिर थे, इसकी नफी नहीं की जा रही, इसको बरतना सीख ले। बकौल सांप का मंत्र सीख ले, कांटे का तोड़ सीख ले, ये दुनिया बेमिसले सांप के है, लेकिन सपेरा सांप को डब्बे में बंद कर घूमता रहता है ना भाई, उसको तो नुकसान नहीं पहुंचाता। और दूसरा आदमी देख ले तो दहशतजदा हो जाता है, वो न सिर्फ घुमाता है बल्कि उसको नचाता भी है। ऐसे अल्लाह वाले जिन्होंने इस सांप का मंत्र सीखा हुआ होता है, मिशाए से अल्लाह वालों से सीखा हुआ होता है इसका तोड़, वो भी ऐसी दुनिया को नचाते हैं, बरतते भी हैं इसको तरीके से, और उन पर इसके असरात भी नहीं होते। नक्शबंदी सिलसिले के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी खिदमत में एक साहब ने उनका शोरा सुनकर दूर से पहुंचे, वहां देखा तो ये भाई शाहाना ठाट हैं। उनके कहते हैं कि मवेशी जो बांधे जाते थे उसमें खूंटों में, वो खूंटे सोने के होते थे, इतना अल्लाह ने माल दिया था। तो उसने जो ये शाहाना ठाट देखे वो वापस हो गया, वहां से उन्होंने कहा ये कैसे अल्लाह वाले, वापस जो हुआ तो रास्ता भटक गया, कहीं जाके पढ़ के सो गया तो ख्वाब देखता है रोज़े क़यामत है और फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं जहन्नम की तरफ। इतने में वाज़ह शेख की सवारी आ रही है अपने लाव लश्कर के साथ, वो करीब आए, कहा अरे भाई इसको कहाँ ले जा रहे हो? अरे छोड़ दो ये हमारा आदमी, फरिश्तों ने छोड़ दिया। आग खुल गई, समझ गए तंबी हुई है, वापस पहुंचे। अब हजरत के पास जब हाजिर हुए, अच्छा जाते हुए एक जुमला भी कह गए थे, ये कैसे कैसे अल्लाह वाले जो दुनिया रखते हैं, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, आए अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, कहा हाँ भाई आइए आइए, कैसे आना हुआ? अच्छा ये बतलाइए कि आपने जाते हुए यहां से क्या इरशाद फरमाया था? अब तो बेचारे पसीने पसीने हो गए। नहीं हजरत, तो बस ऐसे ही कुछ बतलाना पड़ेगा, बतलाना पड़ेगा, इस्लाम मकसूद था, बतलाना इसलिए पूछ रहे थे कि इस्लाम मकसूद था। उन्होंने अपना वही जुमला दोहरा दिया कि मैंने ये कहा था अपनी नादानी से, कम इल्मी से, कम फहमी से, बेवकूफी से, कि ये कैसे अल्लाह वाले जो दुनिया को रखते हैं साथ। तो आगे जो उन्होंने जुमला जोड़ा, उन्होंने फरमाया दुनिया दारद बराए दोस्त दारद, वो दुनिया रखते हैं मगर अल्लाह के लिए रखते हैं। ये कश्फ اس مقام کے تھے کہ صاحب کشت تھے، بتلا دیا مقام تو یہ، اور ظاہر میں اللہ نے یہ دیا ہوا، تو کیا مقصد تھا؟ دل میں نہیں تھا، اور یہی مقصود ہے کہ دل میں نہ ہو. کتنے ایسے ہیں کہ ان کے پاس ظاہر میں تو نہیں ہے لیکن دل میں بھرا ہوا ہے بھائی، ہے نہیں ہے؟ کتنے ان کے پاس نہیں بیچاروں کے پاس، اور دل میں بھرا ہوا میرے پاس ایسا ہو جائے، یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا یہ ہوتا، اس میں مرے جا رہے ہیں. تو یہ تو اور نقصان میں کہ ہے بھی نہیں اور اس کے لیے رال بھی ٹپکا رہا ہے، دونوں نقصان ہو گیا نا. اللہ کی پناہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں مخصوص کرانے کی توفیق دے اصل کامیابی کو سمجھنے کی، اور اس کے لیے تگ و دو کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ دین ہے، دین پر محنت ہو، ہے نا، دین پر محنت ہو، پوری توانائی پوری کوشش، اللہ کے احکامات 100% پورے ہو جائیں. میری ذات کے اعتبار سے، میرے ظاہر کے اعتبار سے، میرے باطن کے اعتبار سے، اور جو مجھ پر ذمہ داریاں عائد ہیں اس کے اعتبار سے، تو 100% دین آ جائے میرے اندر. یہ ہے مقصود اور یہ ہے کامیابی، تقویٰ کے ساتھ. ایسا لوگ آدمی جب دنیا سے جائے گا تو کامیاب جائے گا، انشاءاللہ 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 ہنستا ہوا جائے گا، دنیا رو رہی ہوگی، یہ ہنس رہا ہوگا. اللہ مجھے آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے مقبولین صالحین کا صحیح فیض عطا فرمائے، ہر طرح کی محرومی سے بچائے، ہر طرح کی ناکامی سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام كالسلام، تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ ہم سب کو یہاں جمع ہونا قبول فرما لیجئے، اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اپنا خصوصی تعلق دے دیجئے، اپنی نسبت دے دیجئے. اللہ ہمارے ایمان و اعمال کی حفاظت فرما دیجئے، دین پر ہمیں چلا لیجئے، پورے کے پورے دین پر چلنے کی ہمیں توفیق دے دیجئے، دین پر چلنا ہمارے لیے سہل و آسان فرما دیجئے، عافیت دارین عطا فرما دیجئے. اللہ دنیا اور آخرت کی تمام کے تمام خیر برکت بلائیاں بلا استحقاق عطا فرما دیجئے، دنیا اور آخرت کی تمام کے تمام شور سے بچا لیجئے، ابھی سے لے کر موت تک اور موت سے کہ محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں جانے تک جتنے مصائب نازل گھاٹے آنے والی ہیں، اللہ ہمارے لیے خود امت کے لیے سہل و آسان فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من بك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ من بك سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوه الا بالله. امين امين امين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.